अंधेरे में प्रगतिवादी काव्य स्वर का आदर्श और उसकी सीमा। रामदर्श मिश्र। अंधेरे में एक ऐसी लंबी कविता है जो अपने प्रतिमान स्वयं है। यह न तो किसी कथा पर आधारित है, न मात्र अपने जीवन के उहापोह से गुजरती है। यह न एक बने बनाए आशावाद के सरल मार्ग से चलती है, न जुगुप्सा, निराशा और यौन पिपासा के कीचड़ में पांव धसाकर चलती है। यह एक ऐसी नई कविता है जो स्वयं सामाजिक संदर्भों से कथा गढ़ती है। वह भी कोई एक सूत्रीय कथा नहीं, खंड कथा। उस कथा को कवि की आत्मकथा से जोड़ती है। कवि की भी आत्मकथा कोई बनी बनाई कथा नहीं है, वह उसकी यातना, उसकी संवेदना, उसके चिंतन से बनती हुई कथा है, खंड कथा। कवि, जिसे इस कविता का नायक कहा जा सकता है, कि आत्मकथा एक ऐसी कवि की आत्मकथा है जो अपने में डूबा हुआ न होकर बाहर से जुड़ा है, किंतु ऐसा भी नहीं है कि वह अधिकांश प्रगतिवादियों की तरह मात्र बाहर है। इसलिए उसके भीतर और बाहर की कथा के साचर और टकराहट से एक ऐसी कविता बनती चलती है जो अपनी संवेदना में जटिल है, बहुआयामी है और संरचना में नाटकीय तथा अपने भीतर से निर्मित। टकराहटें बाहर भीतर की ही नहीं है, बाहर और बाहर तथा भीतर और भीतर की भी है। समाज के कई स्तर और रूप हैं, वे आपस में टकराते हैं। कवि के भीतर कई रूप हैं, चेतन और अवचेतन के, निराशा और आशा के, क्रिया और कर्महीनता के, भय और साहस के। भीतर तथा भीतर, बाहर और बाहर तथा बाहर और भीतर की टकराहटों से यह कविता बनती है, अर्थात यह आत्मसंघर्ष और सामाजिक संघर्ष तथा आत्म और अनात्म संघर्ष से गुजरने वाली कविता है। इसलिए वह एक जटिल, गहरी तथा बहुआयामी कविता है। कवि ने इस जटिल कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए स्वप्न और फैंटेसी की शैली अपनाई है। इसलिए मुक्त साहचर्य की पद्धति, जहाँ कथा को विस्तार देती है और सामाजिक यथार्थ के अनेक संक्रांत और जटिल संबंधों को सरलता से उजागर करती है, वहीं दुरूहता भी भरती है। यह दुरूहता न केवल कविता की गति को मारती है, वरन कविता की अनेक संगत और असंगत तथा परस्पर विरोधी व्याख्याएं करने की छूट देती है। यही वजह है कि इस कविता की तथा स्वयं मुक्तिबोध की तरह तरह की व्याख्याएं हुई हैं। मार्क्सवादी व्याख्या भी, अस्तित्ववादी व्याख्या भी और मनोविश्लेषणवादी व्याख्या भी है। यह सच है कि मुक्तिबोध के काव्य में इन तीनों की व्याख्याओं की काफी गुंजाइश है, किंतु इस प्रकार के दुरु और कई प्रकार के संभावनाएं फेंकने वाली कविताओं के मूल स्वर की पहचान के लिए हमें कवि की अन्य कविताओं तथा आलोचनाओं, यदि हैं तो, तथा जीवन संदर्भों की सहायता लेनी चाहिए। समग्र भाव से देखने पर मुक्तिबोध का मूल स्वर प्रगतिवादी ही लगता है। इसलिए अंधेरे में कविता की जटिलता और दुरूहता के बीच अंतर्निहित प्रगतिवादी स्वर को ही मूल स्वर मानना संगत होगा। कविता का आरंभ होता है जिंदगी के अंधेरे कमरों से। कवि अंधेरे कमरों का नाम लेकर छोड़ देता है, अंधेरे का चित्रण नहीं करता, फिलहाल यह काम हमारी कल्पना को सौंप देता है। चित्र शुरू होता है इन अंधेरे कमरों में टहलते हुए किसी प्रकाश में व्यक्तित्व के अस्तित्व बोध से। अंधेरे में बंधे प्रकाश में व्यक्तित्व जीवित है और गतिमान है। उसका बोध तो हो रहा है, किंतु वह दिखाई पड़ता नहीं। यही यह बात समझ लेनी चाहिए कि अंधेरा और प्रकाश में व्यक्तित्व दोहरे अर्थ में ग्रहण किए गए हैं। यह अंधेरा सामाजिक विसंगति और विरूपता का भी अंधेरा है और कवि के अवचेतन मन का भी, तथा प्रकाश में व्यक्तित्व सामाजिक मूल्य और रचना धर्मिता का भी व्यक्तित्व है और कवि की चरम अभिव्यक्ति का जो उसे काम में है। इसी क्रम में एक छोटा सा मूल लक्षित होता है। अंधेरे में टहलते हुए अदृश्य व्यक्तित्व के होने का बोध और गहरा हो जाता है, जब कवि अनुभव करता है कि उस व्यक्ति के दबाव से पुराने अंधेरे कमरे का अस्तित्व दरक उठा है। वह अदृश्य प्रकाश अस्तित्व अपने संघर्ष से अंधेरे के ऊपर अपनी आकृति बना लेता है। फिर यह क्रम एक छोटा सा मोड़ लेता है, यह प्रकाश पुरुष दिखाई पड़ने लगता है, किंतु पहचान में नहीं आता। भव्य ललाट है, तृण हनु, कोई अनजानी अनपहचानी आकृति, कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है कौन मनु। यहाँ एक मोड़ उपस्थित होता है। कवि अंधेरे के चित्रण की ओर उन्मुख होता है। कमरों का अंधेरा पूरे विश्व में फैला हुआ दिखाई पड़ता है। कमरे घर में होते हैं, इसीलिए घर को हम कवि के जीवन का प्रतीक मान सकते हैं। यहाँ लगता है कि चारों ओर अंधेरा है, कवि के जीवन में भी और बाहरी परिवेश में भी, और दोनों में गहरा साहचर्य है। यह भी कह सकते हैं कि परिवेश का अंधेरा ही कवि के जीवन का अंधेरा बन गया है। कवि ने बाहरी अंधेरे को फिलहाल पहाड़ी के उस पार तालाब के बिंब में से रूपायित किया है और अंधेरे और प्रकाश पुरुष का हल्का सा तनाव सर्जित कर दिया है। तालाब के काले जल के भीतर से उभर कर प्रकाश पुरुष का मुस्काता सा चेहरा फैल जाता है, किंतु कवि अभी भी उसे पहचान नहीं पाता, उससे अपना तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता। यहाँ एक बड़ा नाटकीय मोड़ उपस्थित होता है, जिस अंधेरे को ऊपर ताल के बिंब से थोड़ा सा चित्रित किया गया था उसे यहाँ आकर विस्तार और सघनता प्राप्त हो जाती है। अंधेरे का चित्र कई व्यापारों और गतियों से संग्रथित होकर बहुत प्रभावशाली हो उठता है और फिर उसी प्रकार उसकी टकराहट। लाल लाल कुहरा, कुहरे में सामने रक्तलोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। वह पुरुष अभी भी समझ में नहीं आया है, किंतु धीरे धीरे कवि को अनुभव होने लगा है कि वह पुरुष कहीं उसकी अपनी ही अस्मिता का रूप है। कवि उसके साथ आत्मसंबंध अनुभव करने लगता है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, वह पूर्ण अवस्था, वह निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं की, मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिमा। इस प्रकार बाहर चल रहे अंधेरे और प्रकाश के संघर्ष तथा कवि के भीतर चल रहे अवचेतन के अंधेरे और चेतन के विवेक के संघर्ष की दोहरी कथाएं व्यंजित होती हुई आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़कर जटिल संवेदना की सृष्टि करती हैं। दूसरे खंड में फिर कमरे के भीतर का चित्र उभरता है। कमरे में सूनापन है और अंधेरा है, किंतु उसमें से स्वर उभर रहे हैं। सन्नाटे और स्वर का संघर्ष चल रहा है। उधर दरवाजे की साकल बज रही है, कोई कवि को बुला रहा है, आधी रात में कोई मिलने आया है। कवि के अवचेतन के अंधकार को तोड़कर उसका प्रकाशमय चेतन उसके व्यक्तित्व में उदित होना चाहता है और कवि तथा समाज के जीवन के अंधकार को तोड़कर मूल्यों का प्रकाश उभरना चाहता है। अगले खंड में जिस तनाव और टकराहट का बीजारोपण हुआ था उसी का बार बार तरह तरह से भिन्न भिन्न प्रसंगों और बिंबों से गहन विस्तार होता रहता है। वह प्रकाश पुरुष अवसर अनवसर प्रकट होता रहता है। वह कवि की सुविधाओं का तनिक भी ख्याल नहीं करता। यह पंक्ति मूल संवेदना को और आगे बढ़ाती है। मूल चेतना यथास्थिति को तोड़ती है। यथास्थिति बड़ी सुखदायक होती है, किंतु मूल्य का प्रकाश पीड़ा और विवेक से पैदा होता है। वह व्यक्ति को निरंतर कोचता है, समय असमय जगाता है, पीड़ित करता है। बिना पीड़ा के प्रकाश नहीं मिलता और यह प्रकाश बड़ा ही सुंदर होता है। साक्षात्कार होने पर जागृत व्यक्ति उसे आत्मीय समझने लगता है। कवि को इस प्रकाशमय रूप में लीन हो जाने की इच्छा होती है, किंतु उसे कमजोरियों से लगाव हो गया है, इसीलिए वह अपने या सामाजिक इस प्रकाशमय रूप को देखने की क्रिया स्थगित करता रहता है। यह सौंदर्य को, मूल चेतना को पसंद तो करता है, किंतु उसे सही रूप में पा लेने के जो खतरे हैं उन्हें उठाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे सुविधाओं या यथास्थिति में जीने की आदत पड़ गई है, इसलिए वह उससे कतराता है। मुक्तिबोध ने सामाजिक मूल्यों की चुनौती और उसे न स्वीकार कर पाने की समकालीन कवियों की असमर्थता की ओर संकेत किया है। वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर, शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता है मुझको, कहता है इनकामा पार करो पर्वत सिंध के गहवर रफ्सी के पुल पर चलकर, दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। इनकामन, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से, बजने दो साकल। प्रकाश पुरुष या मूल्यबोध अंधेरे में सोए सांसारिक सत्यों की पहचानना है, झूठ सच की समीक्षा करता है। वह भविष्य का प्रकाशमय चित्र खींचता है। उसे सुविधाजीवी का मन सह नहीं पाता, किंतु उसे छोड़ सकना भी तो संभव नहीं। उसे छोड़कर कवि का अस्तित्व ही क्या रहेगा? नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। इस निश्चय के पश्चात कवि लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा होता है, दरवाजा खोलने के लिए, ताकि प्रकाश पुरुष आ सके। यह उठ खड़ा होना आत्मजागरण है। जड़ संस्कारों को तोड़कर बाहर झांकना है, अपने से बाहर निकलना है। यह क्रिया तभी संभव है जब व्यक्ति अपने आसपास के अस्तित्व के साथ साहचर्य स्थापित कर ले। यह साहचर्य ही शक्ति बनता है। प्रगतिवादी कवि मुक्तिबोध की दृष्टि में आत्मजागरण का संदर्भ सामाजिक भी हो सकता है। कवि इंद्रिय बोधों से कुछ बहुत सक्रांत और प्रभावशाली विमुख रचना करते हुए कहता है, अंधेरे के ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे, पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज, आँखों ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी। कवि बाहर झांकता है। कवि ने फिर अंधेरे का बहुत शक्तिशाली चित्रण किया है। बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं। इस अंधियारे में चीखकर एक पक्षी कहता है कि वह प्रकाश पुरुष चला गया है, नहीं आएगा, अब तू उसको खोज। दरवाजे पर दस्तक देने वाला जगाकर चला गया है और गांव शहर में व्याप्त हो गया है। अब परिवेश में व्याप्त इस पुरुष की खोज आत्मजागृत कवि को करनी पड़ेगी। यहां रहस्यवादी स्वर का सामाजिक संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। तीसरे खंड में अंधेरे और प्रकाश के तनाव की यात्रा और भी संदर्भ बहुला और गहरी हो उठती है। कमरे का अंधेरा, कमरे के बाहर का अंधेरा और इस सघन अंधेरे में व्याप्त संदेह और व्याप्त भय की अनुभूति, इस परिवेश को तोड़ तोड़कर उगता हुआ मूल्यबोध, यह स्वप्न है या जागृति, यह स्वप्न के भीतर की जागृति है या जागृति के भीतर स्वप्न चल रहा है, दोनों के ही सक्रांत अवस्था है। सब कुछ स्वप्न में चल रहा हो सकता है, किंतु ऐसा लगता है कि सब कुछ खुली आंखों से देखा जा रहा है, यानी यथार्थ है। सामाजिक अंधकार का यथार्थ, अंधकार के यथार्थ में से रह रहकर उभरता और आहत होता प्रकाश का यथार्थ। इस सामाजिक अंधकार में रोज रोज दुर्घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए इसके बीच में स्थित मन में संदेह होने लगता है। भय जाग पड़ता है कि कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए। कवि ने यहाँ बारी बारी से फैंटेसी में कई महापुरुषों की अवतारणा की है। अंधेरे का जुलूस, जुलूस की भयावह गतिविधियाँ, उनके वस्तुओं के, स्वरों के, रंगों के प्रभावशाली बिंब, सार्थक विशेषणों और प्रस्तुत विधानों द्वारा अंधेरे की संवेदना की अभिव्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली खंड लक्षित होता है। जुलूस के बीच में तालस्ताय, तिलक, गांधी आदि का आना अंधेरे के साथ प्रकाश के तनाव को तो सर्जित करता ही है, एक अजब त्रासदी की विशिष्टि करता है। जैसे सारे पुरुष अपनी मानवीय पीड़ा और करुणा के लिए युगों से अंधेरे में भटक रहे हैं। हाँ, सितारों के बीच रुकते घूमते वे शायद तालस्ताय हैं, नहीं नहीं, शायद उन्हीं जैसे कोई और हैं। वह और कोई नहीं, कवि के भीतर का मूल्य बोध है। संदेह और भय के भीतर से चमकने वाला कवि इस प्रकार बारी बारी से अनेक प्रकाश पुरुषों से अपनी ही मूल्य चेतना का तादात्म्य करता चलता है। यह जुलूस बहुत डरावना है, शहर सोया है। जुलूस शहर के अवचेतन से उपजा हुआ उसी का भी संगतिग्रस्त रूप है। जुलूस में शामिल जो व्यक्ति हैं वे बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं, किंतु यहाँ वे कितने विकृत रूप में हैं। जुलूस किसी मृतक की शोभा यात्रा है। इस यात्रा में बैंड बज रहे हैं, संगीनधारी सैनिक चल रहे हैं। बड़ा डरावना दृश्य है। और विचित्र बात तो यह है कि इसमें सभी तरह के लोग शामिल हैं। मंत्री, उद्योगपति, आलोचक, विचारक, कवि, कर्नल, ब्रिगेडियर, सेनापति, सेनाध्यक्ष और कुख्यात डकैती डोमाजी उस्ताद, सभी अपने असली रूप में एक ही कतार में हैं। जुलूस की दृष्टि कवि पर पड़ती है और शोर उठता है। मारो गोली, दागो साले को एकदम, दुनिया के नजरों से हटकर छिपे तरीके से, हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको, वह जान गया वह सब, मार डालो उसको, खत्म करो एकदम। जुलूस विवेक दृष्टि का विरोध करता है, उसे नग्न रूप से देखने वालों की हत्या कर दी जाती है। चौथे खंड में फिर एक नई गति आती है। सुबह होने वाली है, फिर भी चारों ओर बिखराव है और चुपचाप सेना सड़के घेर लेती है। जनक्रांति के दमन के लिए मार्शल ला लगा दिया गया है। कभी दम छोड़कर भागता है और कई कई मोड़ घूम आता है। भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़, ये पंक्तियाँ इस कविता में कई बार आती हैं और हर बार जनक्रांति के दमन के लिए तत्पर व्यवस्था की मानवीय क्रूरता, भयावहता तथा तज्जन्य कवि या जन की असहायता और भय का चित्रण करती है। जैसे यह टेक हो जो कविता में अपने प्रभाव की आवृत्ति करती रहती है। कवि दमन संबंधी चित्र खींचता है। भागने के क्रम में एक बरगद दिखाई पड़ता है, इसी के नीचे एक सिरफिरा पागल रहता है। यह पागल वास्तव में क्रांति चेता कवि है जो जनजागृति के समय सावधान होकर आत्मोद्बोध के गीत गा रहा है और साथ ही अपने अतीत की निष्क्रियता को धिक्कारता हुआ देश काल विच्छिन्न स्वार्थता कवियों की विसंगत यादि का उद्घाटन करता है। उस पागल के गीत सुनकर एक नई स्फूर्ति होती है, एक नया संघर्ष बोध जाग पड़ता है और वह अपने निष्क्रियता को सामाजिक विसंगति का उत्तरदायी समझने लगता है। बाहरी संघर्ष के समानांतर कवि के भीतर संघर्ष चलने लगता है। चक्र से चक्र लगा हुआ है, जितना ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व की फिक्र से फिक्र लगी हुई है। ये वो स्थल है जो कविता को बाहर और भीतर के तनाव से भर देते हैं। जहां कवि प्रगतिशील तो लक्षित होता है कि तो सामाजिक यथार्थ का सीधा सपाट चित्रण करने वाला प्रगतिशील नहीं, वह सामाजिक यथार्थ और व्यक्ति मन के यथार्थ के जटिल बुनावट से एक अधिक गहरे और व्यापक यथार्थ की पहचान करता है। यहाँ जनसंघर्ष भी है, उसका दमन भी है, कवि का पलायन भी है, पागल का अतीत भी है, जागृत वर्तमान भी है और कवि के नए आत्मोद्बोध के साथ उसकी यह समझदारी भी है कि उसकी निष्क्रियता ही इस सामाजिक विसंगति की उत्तरदायी है। कई स्तरों पर चलती हुई संघर्ष गाथा से बुनी होने के कारण ही अंधेरे में कविता प्रगतिशील कविता भी है और कविता के रूप में बहुत ताकतवर भी। कवि बरगद के पास खड़ा है। बरगद गांव की जिंदगी की सामूहिकता का प्रतीक मालूम पड़ता है जो विराट और शीतलाप्रद है। इसके नीचे बैठकर भूखे प्यासे गरीब अपनी थकान मिटाते हैं। कवि तथा कलाकार एक संघर्ष चेतना प्राप्त करते हैं। कवि का मन आम जीवन की पीड़ा से घुल रहा है। वह टूटे हुए घरों के अंधकार गहरे अभाव में घुलकर उससे एक हो रहा है। इस सामाजिक मानसिकता के कारण उसके भीतर कोई चीज चमक रही है, महक रही है, किंतु वह चीज दिखाई नहीं पड़ती। महक में पीड़ा है और पीड़ा में महक है। पांचवें खंड में फिर एक मोड़ आता है। महक भरी मानसिकता में खोह का आगमन होता है क्योंकि किसी ने एकाएक उसके कंधे पर हाथ रख दिया है। फिर वह भागता है, भागता में दम छोड़ घूम गया कई मोड़। बंदूक की धाएं धाएं छूटने लगती हैं और मकानों के ऊपर गेरुआ प्रकाश फैलने लगता है। कवि भाग कर एक प्राकृत गुफा में छिप जाता है। तिरस्मी खो की कल्पना पर तिरस्मी उपन्यासों का प्रभाव जान पड़ता है और बकौल डॉक्टर प्रभाकर माचवे, कवि स्वयं अपने जीवन में इन गुहाओं के अनुभवों से गुजरा था। यह तिलस्मी खो बाहर के संदर्भ में उतना अर्थ नहीं फेंकती जितना के भीतर के संदर्भ में। यह खो अपना ही अवचेतन रूप है जहां आदमी बाहर से डर कर भाग कर आछिपता है, किंतु कभी अनुभव करता है कि अपने भीतर अपनी कितनी ही छवियां और द्वितियां छिपी हुई हैं। इन छवियों और द्वितियों को सामाजिक जीवन से विच्छिन्न कर अपने ही भीतर छिपा लिया गया है। फिर सीन बदलता है। सुनसान चौराहा है, उदासी है, बिखरी गतियां हैं, मध्यम प्रकाश है, सिपाही ऊँघ रहे हैं फिर भी चौकन्ने हैं, संगीनों के हत्थे जत्थे खड़े हैं और चौराहों पर इन्हीं का शासन हो, भागता में दम छोड़ घूम गया कई मोड़। कभी भय से भाग रहा है ठंडे लंबे चौड़े कुलदारी रास्ते पर। कोई नहीं है, कोई नहीं, केवल अपना भय है। इस स्थिति और मन स्थिति में तिलक के रूप में फिर प्रकाश पुरुष का उदय होता है। कभी भय में प्रकाश को लाता है किंतु प्रकाश को भी संक्रांत के रूप में लाता है, दुखी और आहत रूप में। प्रकाश पुरुष तिलक ने जिस देश के लिए इतना कुछ किया वह देश भय का और संगीनों का देश बन जाए, यह कितनी बड़ी विडंबना है। इसीलिए वे आहत हैं, उनकी नासिका से खून बह रहा है। हाय हाय पिता पिता ओह, चिंता में इतने न उलझो, हम अभी जिंदा हैं, जिंदा चिंता क्या है। कवि की यह पीड़ा उस मूल्यभूत से पैदा हुई है जो तिलक जैसे प्रकाश पुरुष से जुड़ी हुई है। उसे तिलक के स्पर्श से अपने भीतर करुणा, बिजली की चिंगारियों और खून के तालाब का अनुभव होने लगता है। उसके भीतर जबरदस्त फिक्र पैदा हो जाती है। विवेक तीखा सा रंधा चलाने लगता है। नई कविता ने मूल्य को ऊपर से आरोपित नहीं किया, विवेक और पीड़ा से जुड़े मानवीय अनुभवों के भीतर से उसे पाना चाहा है। इस मूल्य बोध के तीव्र होने पर कवि मन ही मन एक निर्णय लेता है कि बंदूक का धड़ाका होता है। चारों ओर रोने चीखने की आवाजें और वेदना की थरथराहट व्याप्त हो जाती है। यह बंदूक शायद गोडसे की बंदूक है जिसने गांधी जी की हत्या की है, या यह बंदूक उस क्रूर व्यवस्था की हो सकती है जो इंसानों का खून करती है। इस परिवेश में बोरा ओढ़े जनता के प्रति गांधी दिखाई पड़ते हैं। वे कह रहे हैं, दुनिया न कचरे का ढेर जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई कुक्कुट, कोई भी मुर्गा यदि बाघ दे उठे जोरदार बन जाए मसीहा। वे कह रहे हैं, मिट्टी के लोंदे में किरणीले कणकण गुण हैं, जनता के गुणों से भी संभव भावी का उद्भव। गांधी जी की बाह में एक बच्चा जन भविष्य है, उसे नई पीढ़ी के हाथ सौंप देते हैं। मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभालो इसको, सुरक्षित रखना। गांधी जी के फैंटेसी के रूप में मानसिक प्रकाश आचार्य के पश्चात फिर अकेलापन छा जाता है। ऐसे समय अकेलेपन का एहसास और गहरा हो जाता है। नन्हा सुकुमार बालक गले से लिपटा है। इस अनुभव को कभी छाती और कंधे से चिपके रहने से, आकाश और कोमल स्पर्श से प्राप्त होने वाली अनुभव के माध्यम से व्यक्त करता है। बच्चा भविष्य है, इसलिए कोमल होने के बावजूद भारी है, अर्थात इसको सुरक्षित रखने तथा विकसित करने का दायित्व तो बड़ा है, भारी है। कवि इस दायित्व के बोझ को अनुभव करता हुआ भी प्रसन्न है। वो सोचता है कि जिसको यह जीवन में नहीं कर पाया वह कर रहा है। संकल्प, अनुभव और रक्त पीड़ा का संबंध होता है। उसी संक्रांत स्थिति से कवि गुजर रहा है। एकाएक बच्चा न जाने कहाँ चला जाता है और उसके स्थान पर रह जाते हैं मात्र सूरजमुखी फूल गुच्छे। उन गुच्छों से प्रकाश विकीर्ण होकर अंग अंग पर फैल रहा है। सूरजमुखी के गुच्छे उस प्रकाश में सुंदर और कोमल अनुभव को रूपायित करते हैं जो भविष्य के बालक को वहन करने के कारण उत्पन्न होता है। इतने में फिर कभी अभावग्रस्त परिवेश में आ जाता है, यानी कि सुंदर भविष्य और अभावग्रस्त कठोर वर्तमान परिवेश की एक हल्की सी टकराहट उत्पन्न कर दी गई है। जीना है अंधेरा, कहीं कोई ढिबरी सी टिमटिमा रही है। और सूरजमुखी के गुच्छे गायब हो गए। वर्तमान के कठोर अंधेरे परिवेश में सुंदर भविष्य को वहन करने का सुखद अनुभव गायब हो गया है और उसकी जगह कंधे पर एक भारी बंदूक आ गई। यह बंदूक किसकी है? कुछ लोगों ने बंदूक को कवि या जनता की विद्रोह शक्ति का प्रतीक माना है, किंतु संदर्भ में यह प्रतीकार्थ खपता नहीं। बंदूक सत्ता के बंदूक के प्रतीक है। इस बंदूक से ही सत्ता जनता का खून करती है और जनता इसी बंदूक को अपने कंधे पर ढोने की नियति से ग्रस्त है। ओहो, बंदूक आ गई, वाह वाह, वजनदार राइफल भाई खूब। ये पंक्तियां निश्चय ही यह व्यक्त करती प्रतीत होती है कि यह बंदूक सुखद है, अर्थात कवि या जनता की शक्ति की बंदूक है, किंतु आगे के संदर्भ को देखते हुए यह अर्थसंगत नहीं बैठता। इसीलिए ओहो, वाह, भाई खूब जैसे प्रसन्नतापूर्वक शब्द अपने भीतर से विडंबना ही व्यक्त करते हैं, प्रसन्नता नहीं। आगे चित्रित है कि इस अभावग्रस्त परिवेश के बीच ये कलाकार मरा हुआ है, मरा नहीं है बल्कि मारा गया है। वह कवि का परिचित है, मानव कवि स्वयं है। वह गलियों के अंधेरों का कलाकार था, वह कलाकार था, गलियों के अंधेरे का हृदय में भार था। पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति चलता था अपना असंगत अस्तित्व। इतने बड़े कलाकार के विडंबना क्या थी? यही कि वह अपने हृदय में हलचल मचाने वाले ज्ञान, स्वप्न या अनुभव को किसी को दे नहीं सका था। शून्य के जल में डूब गया नीरव, हो नहीं पाया उपयोग उसका। मुक्तिबोध बार बार व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और व्यक्ति तथा व्यक्ति के दो पहलुओं के तनाव को लेकर समकालीन जीवन विडंबना और यथार्थ की संश्लिष्टता को रूपायित करते चलते हैं। वे बार बार कलाकार के भीतर निहित मानवीय शक्ति, संभावना और सुंदरता को उजागर करते हुए व्यवहार में उसकी अंतर्मुखता और निष्क्रियता को सामने ला देते हैं और दोनों के टकराहट से एक विचित्र प्रभाव पैदा करते हैं। अपनी निष्क्रियता के बावजूद कलाकार अपने युग को ध्वनित करता है, कर सकता है। वह मरा हुआ कलाकार सबका प्यारा था, वह मुक्ति का कामी था। उसके साथ एक युग मर गया, एक आदर्श मर गया। स्वयं कवि की आत्मा उसे चिढ़ाती है कि तू भी तो सब कुछ अपने भीतर लिए भागता ही रहा। सवाल है, मैं क्या करता था अब तक, भागता फिरता था सब ओर, लेकिन यह समय अपने को कोसने का नहीं, कुछ काम करने का है। और यह काम अकेले संभव नहीं, कुछ नए सहचरों को की खोज करनी पड़ेगी। फिर परिस्थितियों की एक टकराहट सामने आती है। कभी निकलता है नए सहचरों की तलाश में और घिर जाता है आतताइयों से। आतताई उसे पकड़कर सताना शुरू करते हैं। यातना की प्रक्रिया का बड़ा प्रभावशाली चित्र सामने आता है। आतताई कवि को अंधियारे कमरे में ले जाकर यातना दे रहे हैं और उसकी देह को तोड़कर तलाशी ले रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे पाते हैं कि कवि के भीतर जो खतरनाक चीज है वह है विचार। वह विचारों के पर्चे ही उनके खिलाफ जनता में बांटता है और इन विचारों का सेक्रेटरी है आस्था और सरगना है आत्मा। कवि की आस्था और आत्मा को निकालकर उसे निष्क्रिय और शक्ति शून्य बनाने का प्रयास होने लगता है। कवि ने फैंटेसी के माध्यम से समकालीन यथार्थ की एक बहुत बड़ी विडंबना को प्रस्तुत किया है। इस पीड़ा और यातना से मरा हुआ मन देह की सीमा से निकलकर दूर दूर तक आत्मविस्तार कर लेता है। वह अग्नि में जलता हुआ भी हिम के समान शीतल और स्थिर है। वेदनाओं की आंधी में हृदय निश्चल है। सातवें खंड में यातना की तात्कालिकता और स्थूलता का एक अनवरत सूक्ष्मता में बदल जाती है। आतताई कवि को रिहा तो करते हैं किंतु उनकी छाया निरंतर उसका पीछा करती है, उसकी हर गतिविधि की निगरानी करती है। छायाकृतियों की दृष्टि पत्थर के समान कठोर और पैनी है, अरूप और सूक्ष्म होकर भी उसे मूर्त और स्थूल के समान वेदती रहती है। इस दृष्टि का निरंतर वेद इतना गहरा है कि कवि आकुल ही नहीं होता, उसे इसका प्रतिकार करने की तड़प भी होती है। फिर प्रगतिशील दृष्टि उभरती है। कवि यह प्रतिकार भावुक व्यक्ति की तरह अकेले अपने रोज से करने की बात नहीं सोचता। वह सोचता है कि अब उसे साथी खोजने ही चाहिए। वे साथी हैं समलाई कमल, काले गुलाब, स्याह सिवंती, श्याम चमेली आदि। ये सभी फूल हैं, भीतर से कोमल सुगंध बिखेरने वाले, किंतु सभी श्याम हो गए हैं। ये जनता का प्रतीक है। ये कवि के लिए सुझाव संदेश भेजते हैं। ये अपना परिवेश है, किंतु कवि को सहसा दिखता है कि दूर क्षितिज पर बिजली की नंगी लताओं में सफेद नीले मोतिया चंपई गुलाबी फूल झर रहे हैं और वहीं पर अकस्मात हाथ उठते हैं जो अग्नि के फूलों को समेटने लगते हैं। दूर क्षितिज समाजवादी देश हो सकते हैं या भविष्य हो सकता है जो कवि की कल्पना में उभर रहा है। रंग बिरंगे अग्नि के फूलों, शक्ति के फूलों को कुछ हाथ समेट कर आपस में संयोजित कर रहे हैं। कवि पत्थर शक्ति से बिजली के सुंदर फूल बनाने की कोशिश करता है। उसके फूल यानी भाव कुसुम रश्म विकीर्ण करते हैं, किंतु उन्हें अनुकूल अभिव्यक्ति नहीं मिलती। अभिव्यक्ति रूढ़ हो गई है। कवि के मस्तक में सचित वेदना है, इन्हें सही अभिव्यक्ति नहीं मिल पाती, इसीलिए निरंतर शिराओं में तनाव बना रहता है। इसीलिए अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, मठ और गढ़ तोड़ने ही पड़ेंगे। यहाँ अभिव्यक्ति शब्द ध्यान देने योग्य है। अभिव्यक्ति का अर्थ है भीतर के अनुभव को सही रूप में व्यक्त करना। भीतर का अनुभव अंतर्विरोध ग्रस्त है। कवि जन जीवन के लिए सपने देखता है, उसके दर्द को महसूस करता है, मुक्ति की पीड़ा लिए हुए है, किंतु साथ ही उसमें भय है, पलायन है, अवचेतन का अकेलापन है और अंतर्मुखता है। विवेक के जागृत होने पर कवि अपनी सीमाओं को समझता है, जनजीवन से जुड़ना चाहता है, लेकिन जागृत विवेक व्यक्तित्व के अनुभव को पूरी अभिव्यक्ति नहीं दे पाता। अभिव्यक्ति का तात्पर्य है सक्रिय रूप से जनजीवन से जुड़ना। बार बार हांट करता हुआ वह प्रकाश पुरुष ही उसकी पूरी अभिव्यक्ति है, किंतु उसे पूरा पूरा वह कहाँ आत्मसात कर पाता है। पूरी और सही अभिव्यक्ति न मिल पाने के कारण ही कभी स्वयं विडम्बना से गुजरता है और समाज भी। अभिव्यक्ति के लिए खतरे उठाने ही पड़ेंगे। साड़ी रूढ़ियों और व्यवधान, चाहे वे अपनी हो या समाज की, तोड़ने ही पड़ेंगे, तभी दुर्गम पहाड़ों के पार पहुंचा जा सकता है जहां वे बाहें हैं जिनमें प्रतिपल अरुण कमल कांपता रहता है। अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का फैसला करके कवि भागता है और देखता है कि वह बनी बनाई दीवारें तोड़कर उनके पार चला गया है। यहाँ सत्य और सत्ता के संघर्ष की बहस चल रही है। यहाँ सुरंगनुमा गलियों में एक भीतरी आग लिए जनसमूह चल रहा है। कवि की कला के विवेक और विक्षोभ के प्रकाश को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, किंतु कवि अब तक अपने को अकेला समझता रहा है और बौद्धिक जुगाली करता रहा है, कभी भाग रहा है। इतने में चुपचाप कोई एक पर्चा दे जाता है। कवि को लगने लगता है कि उस पर्चे में उसी की संवेदनाएं, अनुभव और गुप्त विचार थे, इसलिए पर्चा पढ़ते समय उसमें उत्साह जागता है। उसे लगता है कि वह सर्वत्र विद्यमान है, अनेक रूपों में, अनेक क्रियाओं में, सारा दिक्काल देश के नक्शे सा प्रतीत होने लगता है। उसे अनुभव होने लगता है कि कर्म की शिलाओं से ही सपनों की मूर्तियां बनेंगी, जिनकी किरणें ब्रह्मांड भर में फैल जाएंगी। जिंदगी की सीमा सूर्यों के पार तक जाती दिखने लगती है। वर्तमान समाज प्रतिवादी समाज है, इसमें चल पाना असंभव है। आठवें खंड में बड़ी त्वरा के साथ सकल क्रियाएं और विचार घूमते हैं, टकराते हैं, आपस में बन जाते हैं और एक संक्रांत संश्लिष्ट प्रभाव की सृष्टि करते हैं। नगर में भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई है, कहीं गोली चल गई है, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, पंक्ति बार बार टेक की तरह आती है और क्रिया तथा परिस्थिति की विभीषिका को घनीभूत करती है। यह एक भयावह अनुभव को मात्र दोहराती ही नहीं, उसमें नए नए आयाम जोड़ती चलती है। इस दृश्य में कई कई स्तर हैं और उनकी टकराहटें हैं। योग और व्यवस्था के चरम अत्याचार और उसकी भयावहता का गतिशील चित्र है। दूसरी ओर इस स्थिति में भी चुपचाप बैठे हुए कलाकारों और बुद्धिजीवियों की शून्यमस्तता, स्वार्थपरता और प्रश्नों की उथली पहचान का चित्रण है। तीसरी ओर जनसंघर्ष का प्रभावशाली अंकन है। जनसंघर्ष मानव संघर्ष के साथ साथ प्रकृति संघर्ष के बिंब से भी चित्रित किया गया है। झरने पत्थर के ढोकों को तोड़ तोड़ कर निकालने के लिए आकुल है। धूल के कण स्वर से कांपने लगे हैं। मकानों के छत से गाटर कूद पड़े हैं। दादा का सोटा भी दांव पेच करता हुआ हवा में नाचता है। यहाँ तक कि बच्चे की पेंपे भी उड़ती है। जनसाधारण का यह काव्यात्मक प्रभावशाली बिंब ऊपर ही संश्लिष्ट है। गिरुआ मौसम, उड़ते हैं अंगार, जंगल जल रहे जिंदगी के अब, जिनके की ज्वलंत प्रकाशित भीषण, फूलों से बहती वेदना नदियां, जिनके की जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियां ज्वलंत अपने बिंब फेंकती। यह वेदना पिताओं की वेदना से मिल गई है। इसमें श्रमिकों का संताप डूबा है। इसके जल को पीकर युवकों का व्यक्तित्व बदल गया है। फिर स्वप्न टूट गया, कवि फिर अकेला हो गया, किंतु देखे हुए स्वप्न का प्रभाव शेष है। संसार सुनहली तस्वीर सा दिख रहा है, मानो कल रात किसी से प्रेम हो गया हो। कवि जन संघर्ष के प्रति रगात्मक लगाव को किसी से हो गए हुए प्रेम के समान अत्यंत आत्मीय और परिणाम में आनंददायक बता रहा है। यानी जन संघर्ष के प्रति लगाव बौद्धिक नहीं है, अत्यंत रगात्मक है। जन संघर्ष से जुड़े होने की अनुभूति आनंददायक तो है ही, प्रकाशदायक भी है। इसलिए कवि इस चित्र के बाद ही सुबह का चित्र अंकित करता है। प्रकाश हो गया है, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना अस्तित्व है जो आलोक में झलक रहा है। महान ग्रंथों के लेखक कवि की नई मानसिक क्रियाओं को देख रहे हैं, फिर भी वही व्यक्ति प्रकाश पुरुष दिखाई पड़ता है। वह पुरुष कौन है? वह कवि की अपनी अनखोजी समृद्धि का परम उत्कर्ष है। कवि उसका शिष्य है, उससे बार बार आलोक प्राप्त करता है, बल्कि कवि स्वयं ही वह है, किंतु स्थिर भाव से उसके यानी अपने प्रकाश रूप का साक्षात्कार नहीं कर पाता। वह प्रकाश पुरुष कवि की परम अभिव्यक्ति खोह में छिपने के स्थान पर जगत की गलियों में घूमता है। अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव वह, सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता, वही फटे हाल रूप परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। इसीलिए कवि अपनी परम अभिव्यक्ति के लिए हर चेहरे को देखता है। हर चेहरे का साक्षात करके ही कवि अपना जन्मादि व्यक्तित्व बना सकता है, और परम अभिव्यक्ति का तात्पर्य उसके इसी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति से है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदी के प्रतिष्ठित लंबी कविताओं की कतार में अंधेरे में का अपना विशेष स्थान है। नई कविता की लंबी कविताओं में वह सर्वाधिक ऊर्जामयी कविता है। वह स्वप्न कथा होने के बावजूद हमारी समकालीन जिंदगी की विषम वास्तविकताओं के विभिन्न स्तरों और पहलुओं से सर्वाधिक तीव्रता और समीपता से टकराती है, और इस कविता में तनावपूर्ण स्थितियों से उद्भूत संक्रांत गहन अनुभवों तथा इंद्रिय बोधों के अनेक सुंदर बिंब हैं जो कविता को कविता बनाते हैं। किंतु इस कविता की कमजोरियों की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। वह स्वप्न कथा है, यानी फैंटेसी है, क्योंकि कवि किसी सुलझी हुई सरल या संक्रांत समकालीन या पूरी कथा का सहारा लेकर नहीं चलता, बल्कि वह हमारी सामाजिक जिंदगी में इधर उधर बिखरे हुए, एक दूसरे से टूटे हुए फिर भी जुड़े हुए यथार्थ के पहलुओं को चित्रित करना चाहता है। जाहिर है इस चतुर्मुखी अस्त व्यस्त वास्तविकता को किसी एक कथा के जरिए नहीं चित्रित किया जा सकता। कथा का अपना आग्रह होता है, सीमा होती है। इसीलिए कवि ने फैंटेसी अर्थात स्वप्न कथा का सहारा लिया है। स्वप्न बिखरे हुए होते हैं, उसी में किसी भी क्रम में कहीं भी किसी भी काल का कोई भी दृश्य उपस्थित हो सकता है। उस पर असंभवता, क्रमहीनता या देशकाल चित्त का दोष नहीं लगाया जा सकता। कवि अवचेतन मन की भी घाटियों की सैर करता है और अवचेतन का संबंध भी स्वप्न से होता है। तिलस्मी उपन्यासकारों ने जिन रहस्यमय दृश्यों को प्रत्यक्ष योजना की, उनकी योजना मुक्तिबोध ने स्वप्न में की है। इसलिए जहाँ तिलस्मी उपन्यास अयथार्थ और हल्के फुल्के मनोरंजनात्मक उपन्यास माने गए, वहाँ मुक्तिबोध का काव्य यथार्थवादी और गंभीर अनुभवों और विचारों से युक्त काव्य माना गया। किंतु इस शिल्प ने मुक्तिबोध काव्य को शक्ति के साथ आशक्ति भी दी है। अंधेरे में कविता में कुछ बातें बार बार दोहराई गई हैं। यह सच है कि अंधेरे के विभिन्न पहलू विभिन्न बिंबों में रूपायित किए गए हैं, किंतु अंधेरे के साथ प्रकाश की टकराहट कवि की मूल्यवत्ता, उसकी सामाजिक उपयोगिता, उसके बावजूद उसकी अंतर्मुखता, निष्क्रियता, प्रकाश पुरुष के सहचर्य से बार बार उसके सक्रिय होने और फिर निष्क्रिय होने के बोध को बार बार फेंटा गया है। सपने में दोहराव होता है, किंतु कविता में भी हो उचित नहीं। कथा का एक फायदा होता है, वह क्रम क्रम से जीवन के विभिन्न पहलुओं और अनुभवों को खोलती हुई, उत्तेजित करती हुई और उन्हें परस्पर बांधती हुई आगे बढ़ती रहती है और अंत में आकर अपने ही माध्यम से अनंत संवेदनाओं को एक सूत्रित कर एक स्पष्ट किंतु गहरे भाव को सृष्टि कर लेती है। वह अपने को दोहराव के दोष से आसानी से बचा सकती है, किंतु अंधेरे में कविता कथाहीनता की शक्ति के साथ साथ उसकी कमजोरी को भी झेल रही है। इस दोहराव और फैलाव के कारण इस कविता में अपेक्षाकृत अधिक आयामों को उद्घाटन होने का भ्रम में पैदा होता है। यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो इस कविता में बुनियादी यथार्थ के उतने अधिक आयाम नहीं है जितने का आभास होता है। बुनियादी यथार्थ के आधार पर बने गए स्वरों, रूपों, क्रियाओं आदि के चित्र बहुत हैं और तरह तरह के हैं, जो बुनियादी यथार्थों को प्रसरणशील तथा और अधिक बहुआयामी बनाते से प्रतीत होते हैं। मुक्तिबोध प्रगतिशील कवि हैं, किंतु यह भी एक विडंबना है कि अंधेरे में और उनकी अन्य कुछ विशिष्ट कविताएं मूलतः प्रगतिशील हैं या और कुछ आलोचक के बीच तय ही नहीं हो सका। इसके लिए आलोचकों को दोषी ठहराने की जगह कविता के भीतर ही झांकना उचित होगा। यह सच है कि इस कविता का मूल स्वर प्रगतिशील है, किंतु कविता बड़ी ध्रुव है। कई कई दृश्य ऐसे हैं जिनका समग्र स्वर तो पकड़ा जा सकता है, किंतु उनमें आए हुए कुछ छोटे छोटे बिंबों के प्रतीकार्थ निकालना और उन प्रतीकार्थों की मूल स्वर के साथ संगति बैठाना कठिन हो जाता है। सामाजिक जीवन के अंधकार के साथ कवि या काव्य नायक के अवचेतन के से काव्य कथा के चिपके रहने से भी यह दुर्होता और उलझाव बढ़ जाता है। पाठक ऐसे अनेक स्थलों पर ज्ञानात्मक संवेदना की यात्रा करने के स्थान पर बुद्धि की यात्रा करने लगता है, यानी पाठक संवेदनात्मक ज्ञान या ज्ञानात्मक संवेदना को काव्य की समझ के लिए अपर्याप्त पाकर बौद्धिक व्यायाम करने लगता है। और यही वजह है कि इतनी ऊर्जामान कविता अपनी पूरी ताकत से पाठकों के लिए उतरते उतरते ठहर जाती है, फिर उठती है, फिर ठहर जाती है, और यह ठहराव उसके प्रभाव की अनवरतता, सघनता और समग्रता को अपेक्षाकृत कम करता है और उसे खास बौद्धिक वर्ग की कविता के रूप में सीमित कर देता है।